उद्धव इस राधा के सदृश भागिनी दुख भागिनी तथा पापिनी भला और कौन होगी, जिसको छोड़कर उसके बड़े मीठे माधव मधुपुरी चले गए और वहां जाकर कहना सुनना भी बंद कर दिया। प्रियतम का ऐसा वियोग सहने वाली तरुणी मेरे सिवा और कोई नहीं, मुझे उन प्रियतम के बिछोह में आज सभी देश सभी काल सूने दिखाई दे रहे हैं। पल पल में मेरे हृदय का दाह भीषण से भीषण रूप में बढ़ा चला जा रहा है। इस ताप से मेरे कंठ तालु भी ऐसे सूख गए कि मुंह से आह भी नहीं निकल पाती। प्रीतम के वियोग की ज्वाला में कैसा भयानक ताप होता है, इसका परिमाण कोई कभी कल्पना से भी नहीं कर सकता। मेरे मन की भीषण वेदना मेरे मन में ही अप्रकट रह जाती है, न वहां तक कोई भाषा पहुंचती है न कोई शब्द उसे व्यक्त कर पाते हैं। मैं अपने मन की बात उद्धव किसे सुनाऊं और कैसे सुनाऊं, और जब कोई मेरे हृदय की बात को जानता ही नहीं तब मुझे प्रबोध देकर कौन मेरे जलते भूनते अंगों को शीतल कर सकता है। उद्धव तुम मेरा दुख देखकर दुखी न हो, मेरा अपहरण करके चले जाने वाले उन हरि के पास चले जाओ। यहाँ ठहरे तो कहीं मेरे ये घोर आग उगलने वाले श्वास तुम्हारे अंगों को झुलस न दे। यो कहते कहते राधा अत्यंत व्याकुल हो जाती है और मूर्छित होकर जमीन पर ढुलक पड़ती है। उद्धव जी के द्वारा समयोचित उपचार किए जाने पर कुछ समय के बाद श्री राधा जी की चेतना लौटती है। तदनंतर श्री राधा के दुख से अत्यंत दुखी उनके ताप से संतप्त सहज सुहृद उद्धव शुभ प्रकट करते हुए कहने लगते हैं, महिमामयी राधा मैं अब तक जानता था हमारे श्याम सुंदर सदैव सहृदय हैं और प्रियजन सुखद हैं, पर आज इन सब गोपांगनाओं की और तुम्हारी उनके वियोग में ऐसी दारुण दीन दशा देखकर मैं ये निश्चित रूप से अनुभव करने लगा हूं कि वे सचमुच बड़े ही निष्ठुर निर्दय हैं। राधे तुम उन कपटी निर्मोही बंधु का स्मरण करके क्यों इतना दुखी हो रही हो। श्री राधा को उद्धव के इन सहानुभूतिपूर्ण वचनों में भी प्रीतम की निंदा का सुनना सहन नहीं हुआ और वे उन्हें बीच में रोक कर बोल उठे, उद्धव ऐसा मत कहो, वे मेरे प्राणनाथ कदाप निष्ठुर निर्दय नहीं हैं, वे बड़े ही सदैव सहृदय हैं। मैं जानती हूं उनका हृदय अत्यंत कोमल है, अब भी वह मेरी स्मृति से पता नहीं कितने कैसे व्याकुल हो रहे होंगे। वे बिना ही रूप गुण देखे सदा मुझ पर मुग्ध रहते हैं, ये तो मैं ही अभागिनी हूं। उद्धव मैं उन प्राणनाथ प्रियतम को कैसे भूल जाऊं, उनकी मधुर मधुर स्मृति ही मेरा जीवन है मेरा अस्तित्व है। इस राधा के रूप में केवल उनकी स्मृति ही तो बची है, क्षण भर की भी उनकी विस्मृति का अर्थ है राधा का मरण, राधा के अस्तित्व का अभाव। विसारूं कैसे श्याम सुजान, एकमात्र स्मृति है आत्मा, स्मृति ही जीवन प्राण, विसारूं कैसे श्याम सुजान, एक मधुर अनन्य स्मृति प्रिय की, नित्य अखंड बनी मन, प्राणी पदार्थ परिस्थिति सबको, सहज भयो समर्पण, नित नव सुंदरता नव माधुरी, नित नव रूप विकास, नित नव प्रीति नित्य नव गौरव, नित नव रास विलास, नित नव नेह भाव नित नूतन, रात दिवस मन राजत, नित नव संगम की मधुर स्मृति, ही मह नित्य विराजत, गुण गरिमा महिमा सुहाग सुख रस वरसी मुस्कान, आतुर मान मनावनी बोलनी सुधा मधुर रस खान, चरण कमल मुख मंडल मधुमय रूप केश श्रृंगार, विकट भ्रकुटि दृग नलिन विशद पदनुपुर की झनकार, सर्वन मात्र मन होत प्रहरखत परस प्रफुल्लित देह, स्मृति में होत सुस्निग्ध आत्मा उपजत नित नवने, कोटि कोटि सत मन मध जन के पटतर आतल पटतर आतल जावत, ब्रह्मा शिव सन का द्विगुण निको जिनके पारन पावत। एक बार सपने हूँ जिनकी ने रूप रास के दर्शन, अग जग बिसर कियो तिन अपनो सर्वस दिवस समर्पण। जिनके मधुर मनोहर मंजुल गुण स्वर लहरी अतुलित, पाहन काठ करत द्रवमय जल मृत तरु करत सुमुकुलित। मरे हुए गाछ को भी मुकुलित कर दे। वायु सूर्य की गति स्तंभित कर अचल करत सब चेतन। तिनको प्रियतम रूप पाई पुनि कैसे सुधि बिसरे मन। मेरे प्राण नाथ वे प्रियतम मधुर मधुर जीवन धन, रात दिना वे रहत रह में बिलगत नहीं एक उछन। उधो तिन में मैं वे मो में नहीं भेद को लेश, प्रियतम के ढिग जाओ सिदौसी लेटो मन को क्लेश। मैं उस जान श्याम सुंदर को कैसे भूल जाऊं, एकमात्र उनकी वह स्मृति ही तो मेरी आत्मा है, वह स्मृति ही मेरे जीवन प्राण है। प्रीतम की एक अनन्य अखंड स्मृति नित्य मेरे मन में बनी रहती है। उनके अतिरिक्त अन्य सभी प्राणी पदार्थ परिस्थिति का मन से विसर्जन हो गया है। उनका वह नित्य नूतन सौंदर्य, नित्य नव माधुर्य, नित्य नया नया रूप का विकास, नित्य नया प्रेम, नित्य नूतन प्रेम का गौरव, नित्य नूतन स्नेह और नित्य नवीन भाव रात दिन मेरे हृदय में स्मृति रूप से सुशोभित है। उनके नित्य नवीन संगम की मधुर स्मृति मेरे हृदय में निरंतर विराजित रहती है। उनकी वह गुण गरिमा महिमा, उनके द्वारा मिला हुआ सौभाग्य सुख, उनकी वरस बरसाती मधुर मुस्कान, मेरे मान करने पर आतुर होकर मनाने की मधुर चेष्टा, उनकी सुधा मधुर रस की खान बाणी, उनके वे अरुण चरण कमल, उनका मनोहर मुखमंडल मधुमय रूप और उनका वे केशों का रूप श्रृंगार, वे बांकी भाव हैं विशाल कमल दल लोचन एवं पैरों के नूपुरों की झनकार, मुझे सदा ही स्मरण करके जलाती रहती। कहीं उनकी ये बातें जरा से सुनने को मिल जाती हैं तो मन हर्ष से पूर्ण हो जाता है, शरीर स्पर्श मात्र से प्रफुल्लित हो जाता है, स्मृति से आत्मा सुस्निग्ध हो जाता है और नित्य नूतन स्नेह का उदय होता है। सैकड़ों करोड़ करोड़ कामदेव जिनकी तुलना में आते लग जाते हैं, ब्रह्मा शिव सनकादि जिनके गुणों का पार नहीं पाते, एक बार स्वप्न में भी जिनको उस रूप राशि की झांकी देख गई, वही सारे अगजग को भूलकर विवश होकर अपना सर्वस्व अर्पण करने को बाध्य हो गया। जिनके मधुर मनोहर सुंदर गुण और जिनकी स्वर लहरी ऐसी अतुलित है कि जो कठोर पाषाण और काष्ठ को भी द्रवमय जल बनाकर बहा देती है, मरे हुए वृक्षों को हरे भरे करके भली भांति मुकुलित कर देती है, वायु तथा सूर्य की चाल रोक देती है और समस्त चल चेतनों को अचल कर देती है, ऐसे उनको मैंने प्रियतम रूप में प्राप्त किया उद्धव। अब भला मेरा मन उन्हें कैसे भूल जाए, वे मेरे प्राणनाथ हैं, मेरे प्रियतम हैं, मेरे मधुर से भी मधुर जीवन धन हैं, वे रात दिन मेरे हृदय में निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते। उद्धव मैं उनमें हूँ और वे मुझमें हैं, हम दोनों में लेश मात्र भी भेद नहीं, तुम तुरंत उन प्रियतम के पास पहुँच कर उनके मन के क्लेश को दूर करो। इतना कहती भाव बदला, वियोग की विषम वेदना पुनः जागृत हो गई और वे मूर्छित होकर पुनः गिर पड़े। प्रयास करने पर जब उन्हें चेत हुआ तब वे रोती हुई बोली, गच्छ वत्स मधुपरीम सर्वम बोधय माधवम यथा पश्यामि गोविंदम प्रयत्नेन तथा कुर निष्फलम मे गतम जन्म। गच्छ मिथ्या दुराशया आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। वत्स उद्धव तुम मथुरा जाओ और माधव को सब बातें समझा कर जिससे हम लोग उनके दर्शन कर सकें ऐसा प्रयत्न करो, तुम तुरंत चले जाओ, हमारा जीवन तो मिथ्या दुराशा में ही निष्फल हो गया, आशा ही परम दुख है और निराशा परम सुख है, राधिका जी यूं कहकर फिर रोने लगी। उद्धव जी ने उनके चरण कमलों में प्रणाम करके प्रस्थान किया। उद्धव जी के जाते राधिका जी पूरे मूर्छित हो जाती हैं। तब गोपियां उन्हें उठाकर सजल कमल पत्रों के सैया पर सुला देती हैं, पर राधा के स्पर्श मात्र से ही वह सैया जलकर भस्म हो जाती है। तत्स्पर्श मात्रा क्षयनम भस्मीभूतम बभूवः। तदनंतर उन विरह ज्वर का थरा श्री राधा जी को वे पुनः दूसरे स्निग्ध स्थान में स्निग्ध चंदन लगे वस्त्रों पर सुलाती है, पर वह सुगंधी चंदनोदक भी तत्काल सूख जाता है। सहसा शुष्कताम प्राप्तम सुगंध चंदनोदकम। फिर वे अपने प्राण प्रियतम की मधुर चर्चा करने वाले उद्धव के चले जाने पर दुखित होकर सहसा बोल उठती है, हा हो उद्धव उद्धव हरिम शीघ्रम गत्वा वदेति च समानय हरिम शीघ्रम यत प्राणेश्वरमित्यपि। हा उद्धव हा उद्धव तुम तुरंत जाकर मेरी ये याचना मेरे प्राणेश्वर हरि को सुनाओ, तुम शीघ्र यहाँ लेकर के आओ। कितनी मार्मिक पीड़ा है राधा के प्राणों में। उद्धव जी श्री गोपियों की दशा देखकर बड़े दुखी हुए। वे अत्यंत क्षुब्ध मन से मथुरा लौटे। श्री कृष्ण के प्रति उन्हें बड़ा रोष आ रहा था। भक्त कवि नंददास जी लिखते हैं, लख निर्दयता श्याम की करि क्रोधित दो नयन, पुनि ब्रज बनिता प्रेम की बोलत रस भरे बैन, सुनो नंद लाडले करुणामयी रसिकता है तुम्हारी सब झूठी, तब ही लो कहो लाख जब ही लो बंध रही मुठी, मैं जानू बज जाई के निर्दय तुम्हारो रूप, जो तुमको अवलंब ही तिनको मिलो कूप, कौन सो धर्म यह। श्याम सुंदर की निर्दयता देखकर उद्धव के दोनों नेत्रों में क्रोध छा गया। फिर ब्रजांगनाओं के प्रेम को स्मरण करके रसभरे वचन बोले, नंदलाल सुनो, तुम्हारी सारी करुणामयी रसिकता प्रेम की बातें झूठी है। तभी तक लाख कह लो जब तक मुट्ठी बंधी है, अब तो ब्रज में जाकर मैंने तुम्हारे निर्दय रूप को जान लिया, जो तुम्हारा अवलंब रहते हैं उनको तुम कुएं में ढकेल देते हो, ये तुम्हारा कौन सा धर्म है। फिर राधा की जन्म दशा का कर्मचित्र सामने आते ही उद्धव जी अपने को मर्यादा में नहीं रख सके, प्रणय कोप में भर कर प्रियतम श्री कृष्ण से कहने लगे, तुम सम निठुर दूजो कौन, राधिका सी प्रेम पुतरी रुदित छाड़ी भौन, तुम सम निठुर दूजो कौन, बिंध गयो नहीं हियो ते छिन कुटिल वज्र कठोर। तुम्हारा हृदय श्याम सुंदर कहते, बिंध गयो नहीं हियो ते छिन कुटिल वज्र कठोर, बीच धारा नाव तजदी ले गए नहीं छोर, तुम समन ठुर दूजो कौन, देख आयो मलिन धूमिल स्वरन तन कृष छीन, देख आयो मलिन धूमिल स्वरन तन कृष छीन, विकल तड़पत दीन दिन निशी, विकल तड़पत दीन दिन निशी, जल रहित जिमीन तुम समन ठुर दूजो कौन, तजे भूखन सकल सुबसन अंग राग श्रृंगार, शिथिल बेनी सुमन बिखरे केसरूखे झार, तुम समन ठुर दूजो कौन, बोध नहीं कछु रात दिन को नहीं जल थल ज्ञान, आत्म पर मानव या मानव की न कछु पहचान, तुम समन ठुर दूजो कौन, हा दैत हा हृदय बल्लभ हाज प्राणाधार, अश्रुधारा बहत अभिरत करत करुण पुकार, तुम समन ठुर दूजो कौन, विरह ज्वाला जरत मन तन दहत दारुन पीर, विरह ज्वाला जरत मन तन दहत दारुन पीर, जरी परसत कुसुम सजिया सांस अनल समीर, तुम समन ठुर दूजो कौन, जरी जल गई जली जरी परसत कुसुम सज्जा सांस अनल समीर, रस रहित उर भयो सूख्यो तप्त आंसू स्रोत, रुकते पुनि पुनि प्राण पुन छिन पुनर्जीवन होत। रुकते पुनि पुनि प्राण पुनि छिन पुनर्जीवन होत। सकल सुख कारण कहावो जगत जीवन नाम। प्राण अबलन के हरत ये कहा तुम्हारो काम। मिल धाय पहुंचो बेगी माधव करो जीवन दान। मिलिय बाधित बिरह पीड़ा हरो सपदि महान। भई को न राधिकासी है न आगे होय। भई को न राधिकासी है न आगे होय। प्रेम मूर्ति भजे तुमको लोक वेदई खोय। तुम समन निठुर दूजो कौन। श्री कृष्ण तुम जैसा निष्ठुर दूसरा कौन होगा जो राधा सरीखी प्रेम पुतली को घर में रोती हुई छोड़ आए। तुम्हारा वज्र के समान पुतले कठोर हृदय उसी क्षण विधि क्यों न गया। जो तुम मझधार में नौका छोड़े आए किनारे तक नहीं ले गए। मैं स्वयं देख कर आ रहा हूं राधा की दिन दशा। उसका स्वर्ण सा शरीर मैला धुआंसा अत्यंत कृश प्रक्षीण हो गया है। वो रात दिन जल से निकाली मछली की तरह अत्यंत दीन और व्याकुल होकर तड़पती रहती है। पर मछली की तरह उसके प्राण नहीं निकलते। उसने संपूर्ण सुंदर वस्त्र आभूषण अंगराग और श्रृंगार का त्याग कर दिया है। उसके सिर की वेणी ढीली हो रही है और फूल इधर उधर बिखर रहे हैं और सिर के बाल सब रूखे हो रहे हैं। उसे न रात दिन का पता है न जलस्तर का ज्ञान है और न वो अपना पराया जानती है और न उसे मनुष्य मनुष्य पशु पक्षी की पहचान रह गई है। वह विराम आंसुओं की धारा बहाती हुई हा प्यारे हा हृदय वल्लभ हाय मेरे प्राणाधार कहती हुई करुण पुकार करती रहती है। तुम्हारे विरह की ज्वाला से उसका मन जल रहा है। शरीर भयानक पीड़ा से दहकता रहता है। पुष्पों की सैया उसका स्पर्श होते ही जल गई। श्वास के से पावकमय पवन निकलता रहता है। अब तो अंदर की आग से उसका हृदय सूख कर इतना रस रहित हो गया है कि उसके उन तप्त आंसुओं का स्रोत भी सूख गया। क्षण क्षण में बार बार उसके प्राण रुक जाते हैं। वो निष्प्राण हो जाती है फिर दूसरे क्षण वह पुनः जी उठती है। तुमको तो सब लोग सब प्रकार से सुख देने वाला कहते हैं और तुम जगत के जीवन कहलाते हो। फिर ये तुम्हारा कौन सा काम है कि तुम अबलाओं के प्राण हर रहे हो ये दूसरे जगह का। इस प्रकार स्त्री हत्या तो ज्ञान शून्य चोर डाकू भी नहीं करते। स्त्री हत्या नहीं वांछती ज्ञान ही नाश दस्यव। ये ब्रह्म वैवर्त का श्लोक है। स्त्री हत्या नैव वांछती ज्ञान ही नाश दस्यव। अरे माधव तुम तुरंत दौड़ कर वहां जाओ और राधा को जीवन दान करो। उससे निर्बाध मिलकर तुरंत उसकी महान विरह यंत्रणा को दूर करो। देखो राधिका सरीखी प्रेम की प्रतिमा न तो कोई पहले हुई न अब है और न भविष्य में होगी ही जो सारे लोग वेद को खोकर केवल तुम्हारा भजन करती। इस पर श्री कृष्ण उद्धव को समझा कर बता देते हैं कि उनमें और तथा राधा और गोपांगना में कोई भेद नहीं। अस्त इन बातों से पता लगता है कि राधा के हृदय में कितनी भयानक वियोग वेदना है और प्रियतम भगवान के मिलने पर उसे कितना सुख हो सकता है। परंतु निर्मल दिव्य प्रेम की मूर्ति राधा श्याम सुंदर के सुख को ही अपना स्वभाव बनाए हुए इससे वे मथुरा तो जाती नहीं पर श्याम सुंदर के समीप रहने से भी उन्हें कोई कष्ट न हो जाए इस कल्पना से कांप उठती है और उनसे दूर बहुत दूर भाग जाना चाहती है। इस विषय में एक संत ने अपनी अनुभूति से बहुत लिखा है। उसमें से तीन छंद यहाँ पर दिए जाते हैं बड़े मार्मिक। वह देश दूर है आज जहाँ मेरे प्राणाधिक हैं प्रियतम। उससे विपरीत दिशा में ही मैं भाग चलूँ अब तो प्रियतम। उससे विपरीत दिशा में ही मैं भाग चलूँ अब तो प्रियतम। है तापमान इन श्वासों का प्रतिपल बढ़ता जाता प्रियतम। है तापमान इन श्वासों का प्रतिपल बढ़ता जाता प्रियतम। इनकी गर्मी न लगे जिससे उस नील कलेवर को प्रियतम। इसकी गर्मी न लगे जिससे उस नील कलेवर को प्रियतम, मेरे प्राणाधिक श्याम सुंदर आज जहाँ है वह देश यहाँ से दूर है, परंतु अब तो मैं उसकी विपरीत दिशा में और भी दूर भाग जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे इन श्वासों का तापमान प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा है, कहीं इनकी गर्मी वहां तक पहुंचकर उस नील कवेल कलेवर को लग न जाए। दूसरा, अली कुल गुन गुन करता था क्यों मेरे पीछे वे थे प्रियतम, अली कुल गुन गन करता था क्यों मेरे पीछे थे वे प्रियतम, वे चले गए अतएव देह ये सरी गली अब है प्रियतम, वे चले गए अतएव देह ये सरी गली अब है प्रियतम, ये गंधवाह इसलिए यहाँ निश्चय कपूय होगा प्रियतम, ये गंधवाह इसलिए यहाँ निश्चय कपूय होगा प्रियतम, मैं चलूं और भी दूर न उनके पास गंध पहुंचे प्रियतम, मैं चलूं और भी दूर न उनके पास गंध पहुंचे प्रियतम। मैं चलती थी तब गुनगुनाता हुआ, श्याम सुंदर के गुण गाता हुआ भ्रमरस समुदाय मेरे पीछे पीछे चलता था, क्योंकि वे साथ थे, यह उनके अंग सुगंध का प्रभाव था, आज वे चले गए, इससे अब ये सरीगरी दुर्गंध भई देह रह गई है, अतएव यहाँ की हवा अब निश्चय ही दुर्गंध और अपवित्रता से भर जाएगी, मैं और भी दूर निकल चलूं जिसे अपवित्र दुर्गंध उनके पास तक न पहुंचे। तीसरा, मैं नहीं मरूंगी कभी सत्य यह है त्रिकाल फिर भी प्रियतम, मैं नहीं मरूंगी कभी सत्य यह है त्रिकाल फिर भी प्रियतम, ये तन तो सदा जलेगा ही काली उन लपटों से प्रियतम, फैलेगी धूम राश नभ में, फैलेगी धूम राश नभ में, मैं इतनी दूर चलूं प्रियतम, धुआं लगकर पंकिल न बने वे दीर्घ सरोज दल से प्रियतम, धुआं लगकर पंकिल न बने वे दीर्घ सरोज दल से प्रियतम। इत्यकाल सत्य है कि मैं कभी नहीं मरूंगी, पर ये मेरा शरीर तो उन काली लपटों से सदा जलता ही रहेगा, इससे आकाश में धुएं के गोट फैल जाएंगे, अतः मैं इतनी दूर चली जाऊं जिससे ये धुआं लगकर मेरे प्रियतम के ये कमलगल सदृश नेत्र कहीं पंकिल न बन जाए। इस प्रकार प्रियतम के सुख की स्मृति तो स्वसुख का सहज विसर्जन राधा का स्वभाव है, अपना उनके वियोग में दुख का अत्यंत असह्य भाव भी सह लेती है वो, पर कहीं प्रियतम को जरा सा भी कष्ट मेरे किसी कारण से न हो जाए, इसलिए मैं और भी दूर चली जाऊं कि जिससे मेरे संपर्क में आने वाली कोई भी दुख की चीज उनको स्पर्श न कर पावे। इसी का सहज स्वभाव, इसी का सहज अनुकरण की भजबालाएं करती हैं, और स्वसुख त्याग और विशुद्ध अनुराग के द्वारा वे प्रियतम श्री कृष्ण के परम प्रेम की पात्री बनकर धन्य होती है। इस परम भगवत प्रेम के साधना का आरंभ होता है भगवान के प्रति अनन्य राग की पवित्र भावना से, साधना की चीज भगवान में राग आरंभ होते ही सहज स्वाभाविक भोग विराग, प्रपंच की विस्मृति, मन इंद्रियों की भोगों से उपरति, स्वसुख वासना का त्याग और अहम की विस्मृति होने लगती है। प्रापंचिक भोगाशक्ति तो सहज वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे सूर्योदय होते ही अंधकारमयी रात्रि, सूर्य को प्रयास करके रात्रि का नाश नहीं करना पड़ता, सूर्योदय के प्रकाश का आभास होते ही रात्रि का अंधकार मरने लगता है। इसी प्रकार हृदय में इस पवित्र प्रेम का बीज बपन होते ही भोग वासना नष्ट होने लगती है। याद रखना चाहिए भगवत प्रेम और भोगाशक्ति कभी एक साथ नहीं रह सकती, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबू के रह सके रब रजनी इकठा। अतएव इस प्रेम साधना में भोगाशक्ति का त्याग अनिवार्य है, इसी से इस भक्ति के शांत दास सख्य वात्सल्य और मधुर इन पांच रसों में शांत प्रथम है। शांत रस का अभिप्राय है इंद्रिय मन का भोग जगत से विमुख होकर केवल भगवान की सेवा में लग जाना। वेदांत के साधन चतुष्टय में विवेक वैराग्य के पश्चात मन का संयम, इंद्रियों का दमन, द्वंद्व सहिष्णुता, भोगों से उपरति, अटल श्रद्धा, समाधान, संदेह रहित स्थिति, ये षट संपत्ति प्राप्त होती है। लगभग ऐसी स्थिति भक्ति के शांत रस में हो जाती है। उस षट संपत्ति की प्राप्ति से वहां मोक्ष की प्रबल इच्छा का, मुमुक्षुता का उदय होता है। तो यहाँ भगवत सेवा, भगवान के दासत्व की प्रबल आकांक्षा का उदय होता है। इसी से इसके बाद ही दाशरथी का उद्भव होता है। दाशरथी का भक्त इंद्रिय मन का गुलाम नहीं रहता, वह सबकी दासता को से अपने को मुक्त करके एकमात्र अपने स्वामी भगवान का दास स्वीकार करता है। वह न किसी का दास रहता है और न किसी को दास बनाता है। यही रस क्रमशः प्रगाढ़ और उत्कृष्टतर होता हुआ मधुर रति में परिणत हो जाता है। इस मधुर भाव में भी वह श्री लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी आदि की लीला चरित्र से आगे बढ़कर गोपी भाव में परिणत होता है, जहाँ भोग मोक्ष की, प्रिया का सहज त्याग, अहम की पूर्ण विस्मृति, स्वसुख की कल्पना का सर्वथा सर्वदा अभाव, नित्य निरंतर प्रीतम श्याम सुंदर की मधुर सुख स्मृति में ही जागृत रहती है। ऐसे ही भगवान के सेवक केवल भगवान केवल भगवत चरणारविंद में ही प्रीति चाहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, चहुन सुगत सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बड़ अनुदिन अधिकाई, अर्थन धर्मन काम रुचि गतिन चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। भगवत प्रेम को छोड़कर न मैं सदगति चाहता हूँ, न सन्मति, न लौकिक या दैव संपत्ति, न ऋषि न रिद्धि सिद्धि, न बहुत बड़ाई, यही चाहता हूँ कि भगवान राम के चरणारविंद में मेरा हेतु अनुराग दिनों दिन अधिक से अधिक बढ़ता रहे। प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है, उसका अंत नहीं आता। इसी से गोसाई जी प्रेम की प्राप्ति नहीं कहते, उत्तरोत्तर प्रेम की वृद्धि चाहते। वे कहते हैं, मैं अर्थ धर्म काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय को भी नहीं चाहता। चाहने की बात तो अलग रही, मेरी न अर्थ में रुचि है, न धर्म में, न काम में और न मोक्ष में रुचि है। मैं दूसरा कुछ नहीं चाहता, केवल यही वरदान चाहता हूँ कि जन्म जन्म में मेरी रति भगवान राम के चरण कमल बनी रहे। भक्त प्रहलाद जी ने भी जन्म बंधन से मुक्ति छूटने की इच्छा न रख कर कहते हैं, नाथ योनि सहस्रेशु येषु येषु व्रजामि हम तेषु तेषु चला भक्ति रचुता सदात्मयि। प्रेमावतार गौरांग महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्त रहे तकी त्वयि। धन जन कविता सुंदरी चहो न मैं जगदीश, बनी रहे प्रति जन्म में भक्त अहे तुकीश। इस परम प्रेम रूपा भक्ति में जिसके साधन को रागानुगा नाम दिया जाता है, भगवान अपने निज प्रियतम होते हैं। वे प्रेमी का हृदय होते हैं और प्रेमी उनका, भक्त उनमें रहते हैं और वे भक्तों में। मैते तेषु चाप्यहम, ये प्रेम की साधना अनन्य टेक से आरंभ होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस विषय में अनन्य टेकी और प्रेम विवेकी चातक का बड़ा सुंदर उदाहरण देते हुए कहा है, जो घन बरसे समय सिर जो भरी जन्म उदास, तुलसी या चित चातक तो तिहारी आस।